आखिरी वसीयत, मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं वो उसका एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी बरसों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए, यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है। मगर हम सब शरीक रहे कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। मैं चाहता हूं और सच्चे दिल से चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाएं। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूं और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूं। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। उनमें से मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में डाल दी जाएं और उनके बड़े हिस्से के साथ ऐसा किया जाए जो मैं आगे बता रहा हूं। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचा कर न रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे, जहां तक मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंग और रूप को देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की, जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं। गंगा तो विशेष कर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातियां, स्मृतियां, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा का गंगा की गगा। वह मुझे याद दिलाता है, मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, चोटियों की ओर गहरी घाटियों का, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों की, जहां काम करते मेरी जिंदगी गुजरती है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है और देखा है शाम के साय में उदास, काली सी चादर ओढ़े हुए, मत भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ी चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत का प्राचीन, भारत के प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। भले ही मैंने पुरानी परंपराओं, रीति और रस्मों को छोड़ दिया है, और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूं। मुझे फक्र है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का, जो हमारी रही है और हमारी है। और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी और सभी की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जो कि कभी नहीं और कहीं नहीं टूटी है, और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं उसको बेहद कद्र करता हूँ और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति और श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरखास्त करता हूँ कि मेरे भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि यह महासागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरे भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए? मैं चाहता हूं कि इसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रेनबो, उगना टू अपियर, नब स्काय, लो सी, रेखा लाइन, टेढ़ा कर्व्ड, उमड़ना घुमड़ना, टुगेदर थिक, घटा क्लाउड, घेरा सर्कल, धातु दाह सफरिंग, तर्क लॉजिक, आकर्षक चार्म अट्रैक्शन। इंद्रधनुष नब में उग आई लो, रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसे आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं।
रामायण और महाभारत, वेदों के जमाने के बाद काव्यों का जमाना आया। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि इसी जमाने में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए, जिनका हाल तुमने पढ़ा है। महाकाव्य उस पद्य की बड़ी पुस्तक को कहते हैं, जिसमें वीरों की कथा बयान की गई हो। काव्यों के जमाने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड़ तक फैल गए थे। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, इस मुल्क को आर्यावर्त कहते थे। जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं, वह उस जमाने में मध्य प्रदेश कहलाता था, जिसका मतलब है बीच का मुल्क। बंगाल को बंग कहते थे। यहाँ एक बड़े मजे की बात लिखता हूँ, जिसे जानकर तुम खुश होगी। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर निगाह डालो और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के हिस्से को देखो, जहाँ आर्यवर्त रहा होगा, तो तुम्हें वह दूध के चांद के आकार का मालूम होगा। इसीलिए आर्यावर्त को हिंदू देश कहते हैं, हिंदू चांद को कहते हैं। आर्यों को दूध के चांद से बहुत प्रेम था। वे इस शक्ल की सभी चीजों को पवित्र समझते थे। उनके कई शहर इसी शक्ल के थे, जैसे बनारस। मालूम नहीं तुमने ख्याल किया या नहीं, इलाहाबाद में गंगा भी दूज के चांद की सी हो गई है। यह तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और रावण के साथ उनकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है। इससे इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। बाद को वही कथा बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखी गई। उनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान में बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनका बहादुर सरदार था। मुमकिन है रामायण की कथा आर्यों और दक्षिण के आदमियों की लड़ाई की कथा है, जिनके राजा का नाम रावण रहा हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र न करूँगा। तुमको खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया। यह रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। यह आर्यों और दक्षिण के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी वह बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसमें गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। सबसे बढ़कर हम सबको इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वह अमूल्य ग्रंथ है जिसे भगवद गीता कहते हैं। यह किताबें कई हजार वर्ष पहले लिखी गई थीं। जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी वे ज़रूर बहुत बड़े आदमी थे। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं, लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सियाने उनसे उपदेश लेते हैं। अखबार संकलित। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 17 अगस्त को मतदान। नई दिल्ली, 12 जून। मालूम हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 17 अगस्त को होगा और सफल उम्मीदवार के नाम की घोषणा 22 अगस्त तक कर दी जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति 24 अगस्त को अवकाश ग्रहण करेंगे। उसी दिन सुबह राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। दूसरा, अणु विस्फोट पर केवल 30 लाख की लागत। नई दिल्ली, 31 मई। यू न्यू प्रेटर अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एच एन सेठना ने आज बताया कि भारत के पहले शांतिपूर्ण अणु परीक्षण पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च हुए। श्रेष्ठ पृष्ठ 2 कॉलम 2 पर। तीसरा, नगर का मौसम। शनिवार को आसमान साफ रहेगा। शुक्र को अधिकतम तापमान 33.5 अंश सेंटीग्रेड सामान्य और न्यूनतम तापमान 26.7 अंश सेंटीग्रेड सामान्य से 1 अंश कम रहा। शनिवार को सूर्यास्त 5.48 पर तथा रविवार को सूर्योदय 6.25 पर होगा। चौथा, ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा। नई दिल्ली, शुक्रवार। सारे देश में आज ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति जी अहमद ने आज ईदगाह में नमाज पढ़ी। उन्होंने ईद पर शुभकामनाएं देते हुए देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखने पर बल दिया। जामा मस्जिद व फतेहपुरी मस्जिद में भी नमाज पढ़ने वालों की भारी भीड़ थी। जामा मस्जिद पर ईद के मेले में आज काफी रौनक थी। लोग मुबारकबाद देते हुए एक दूसरे से गले मिल रहे थे। पहले बाल कटाइए। बंबई 10 जून प्रेस ट्रस्ट यहाँ के उपनगर के एक कॉलेज में आज छात्र प्रवेश के लिए लाइन में लगे तो ये जानकर उन्हें घबराहट हुई कि प्रवेश के लिए उन्हें छोटे बाल रखने होंगे। प्रवेश लेने गए छात्रों में जिनके बाल कंधों पर लहरा रहे थे, कॉलेज अधिकारियों ने उनसे कहा, पहले आप बाल छोटे कटाकर आइए, तभी प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकेंगे। कॉलेज के निकट एक ही हेयर कटिंग सैलून था। एकाएक इसमें बाल कटाने के लिए लाइन लग गई। प्रेम से हिंदी, हमारे मद्रास स्थित रिपोर्टर द्वारा। मद्रास 12 नवंबर तमिलनाडु हिंदी प्रेम में देश के दूसरे हिंदी भाषी राज्यों से बहुत आगे है। इस समय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम को सबसे अधिक सफलता तमिलनाडु में मिल रही है। वहां 4,200 से भी अधिक छात्र स्वेच्छा से हिंदी सीख रहे हैं। छात्रों की ये संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है और कुल संख्या का 35-40% है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पिछले दिनों मद्रास में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों से सीधा संपर्क स्थापित कर अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना था। इसमें 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की। इस अवसर पर स्वयं उन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम से हिंदी सीखने का फॉर्म भरा और तुरंत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक को उसका शुल्क दे दिया। केरल के भूतपूर्व सचिव भी इस कार्यक्रम में एक छात्र के रूप में उपस्थित थे। वह गत 3 वर्षों से हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और मद्रास के पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों और स्थानीय हिंदी विद्वानों में संपर्क बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 7वां, भारत का पाक को व्यापार प्रस्ताव, हमारे राजनीतिक संवाददाता द्वारा। नई दिल्ली 4 नवंबर पाकिस्तान रेडियो ने विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का भारत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसने भारत को यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच वायु संबंध फिर से जोड़ने के बारे में इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होनी चाहिए। 8वां, प्रयोग में 3.5 लाख का सोना चांदी बरामद, हमारे प्रतिनिधि द्वारा। प्रयाग 12 अक्टूबर कस्टम और आयकर अधिकारियों ने यहां एक सर्राफ के यहां आकस्मिक छापे में अब तक 3,60,000 रुपए के मूल्य का छिपा सोना और चांदी जब्त किया है। नवीनतम सूचना के अनुसार तलाशी की कार्रवाई अभी जारी है। इस छापे से अनेक व्यवसायियों में खलबली मच गई है। 9वां, भारत अणु बम नहीं बनाएगा, पृष्ठ 1 कॉलम 1 से। डॉक्टर सेठना ने दिल्ली दूरदर्शन पर भेंट वार्ता में जोर देकर कहा है, अणु परीक्षण शांतिपूर्ण कार्य के लिए किया गया, विस्फोट के लिए स्थान का चुनाव भी व्यापक अध्ययन के बाद किया गया, जिससे परीक्षण के प्राप्त ज्ञान का सीधा उपयोग ऐसे ही स्थानों में किया जा सके जहां तेल अथवा गैस निकालने की संभावना है। भारत को अणु बम बनाने में कितना समय लग सकता है, इस प्रश्न को डॉक्टर सेठना ने काल्पनिक बताया और कहा कि इसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अणुशस्त्र नहीं बनाएगा।
मैडम,
थैंक यू, दैट्स ग्रेट।